اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گم نام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے، تونے دنیا بنائی کیوں، مقصد بتا، تونے دنیا بنائی کیوں، مقصد بتا، روحیں اس میں بسائی کیوں، مطلب جتا، روحیں اس میں بسائی کیوں، مطلب جتا، تیرے جلوہ سے روشن زمین آسمان، کیوں کسی کو نظر تو نہ آتا یہاں، تیری پردہ نشینی کا انجام ہے، ڈھونڈتا آج بھی تجھ کو انسان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا
પિતા બ્રહ્મા કુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય પિછલે 83 વર્ષો સે સમાજ કી આધ્યાત્મિક ઓર સામાજિક સેવા કા કાર્ય કર રહી હૈ और शुरू से ही हमारी सेवा के मुख्य दो साधन रहे हैं, एक सत्य ईश्वरीय ज्ञान और दूसरा सहज राजयोग। यहां जो सहज राजयोग आप सीख रहे हैं उसका आधार कोई क्रिया नहीं है, इसमें कोई शारीरिक आसन प्राणायाम या व्यायाम की कोई क्रियाएं नहीं है। इस राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है, जैसा कि भक्ति में मन और बुद्धि परमात्मा में एकाग्र करने के लिए कोई रटते हैं, कोई जपते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं, राजयोग में ऐसा कोई बाह्याचार नहीं है। इस योग का आधार कोई मनुष्य गुरु या शास्त्र नहीं है, इसमें कोई साधनों का प्रयोग भी नहीं है। भक्ति में हम कितनी साधन सामग्री लेते हैं, यहां कोई साधनों का प्रयोग नहीं है। राजयोग का आधार सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। इसलिए जैसे जैसे मूल सत्य ज्ञान आप समझते जाएंगे, ऐसे ऐसे योग अभ्यास कैसे करना है वो स्पष्टता आपको होती जाएगी। आपके प्रतिदिन के जो मॉर्निंग सेशंस है, ये 7 से 8 बजे वाले, उसमें आप ये मूल ज्ञान प्राप्त करेंगे। योग शब्द का अर्थ मिलन है। वियोग माना अलग हो जाना, बिछड़ जाना, सेपरेशन। योग शब्द का अर्थ है मिलन मनाना, कनेक्शन जोड़ना। इसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो हमारी बुद्धि में प्रथम 2 बातें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं कौन हैं और हमें किससे योग लगाना है। हरेक का बुद्धि योग कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ ही है। किसी का योग व्यक्ति से लगा है, किसी का बुद्धि योग साधनों से अटैच है। कईयों ने अपने मन बुद्धि व्यसनों में, विकारों में, बातों में, घटनाओं में लगा के रखा है। कोई धर्मात्माओं को, महात्माओं को, देवात्माओं को याद करते हैं, पर इसको योग नहीं कहते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसे योग कहते हैं। तो हम स्वयं कौन हैं? 27 तारीख को सुबह ये प्रथम विषय पर आपका क्लास हुआ था कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। हमें स्पष्ट रहे कि शरीर तत्वों से बना है, इसलिए शरीर जड़ है, नॉन लिविंग है। शरीर परिवर्तनशील है और आखिरकार नाशवंत है। बल देखने में शरीर आ रहा है, पर सत्य ये है कि हम शरीर नहीं हैं। हम इस शरीर को धारण करने वाली, इस शरीर द्वारा कर्म करने वाली चैतन्य शक्ति है, आत्मा है। तो देखिए ये कितनी बड़ी अज्ञानता है कि इंसान जीवन भर खुद को शरीर ही समझता रहता है, शरीर भान में ही हम रहते हैं। इसलिए परमात्मा आकर प्रथम सत्य स्वयं के बारे में यही बताते हैं कि आप चैतन्य शक्ति हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हैं। शरीर तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। इस शरीर रूपी साधन को हमें स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, परंतु शरीर के अभिमान में नहीं आना है, बॉडी कॉन्शियस नहीं बनना है। इसलिए प्रथम लेसन से तीन अभ्यास रोज अगर बार बार आप करते रहेंगे तो बहुत सहज सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे। पहला अभ्यास आत्मा स्मृति में रहे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते देखते बोलते सुनते हमें मन ही मन ये अवेयरनेस रहे, ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप। मैं आत्मा मस्तक द्वारा सोचती हूं, आंखों द्वारा देखती हूं, कानों द्वारा सुनती हूं, मुख द्वारा बोलती हूं, परंतु मैं मुख नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, मस्तक नहीं, मैं इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा आत्मा हूं। दूसरा अभ्यास आत्मा दृष्टि से देखना। आप जिसको भी मिले बातचीत करें, जिसको भी देखें, हम उनके मस्तक में देखें कि मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, हम सभी आत्माएं हैं, एक ही परमात्मा के बच्चे, हम आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। हम किसी को भी देह दृष्टि से नहीं देखें। देह दृष्टि से देखते हैं तो ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये युवा है, ये बूढ़े हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये भारतीय है, ये अमेरिकन है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये सारे भेदभाव बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। इसलिए हरेक को आत्म नजर से देखना है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। हम क्या समझते रहे मैं पुरुष हूं, ये गलत है। मैं स्त्री हूं, ये गलत है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। तो ये आत्मा दृष्टि का दूसरा अभ्यास रोज करें। और तीसरा अभ्यास है, सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सो जाते हैं तब तक जो भी कर्म करते हैं आत्मा धर्म में स्थित होकर करना है। अब आप समझ गए होंगे कि देह धर्म भिन्न भिन्न है। देह धर्म से कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई है, पर हम सभी आत्माओं का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। प्रत्येक आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर से शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है, शांत है। ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है। हमें हर कर्म शांति से, शुद्धि से, ज्ञान स्वरूप बनकर आदि मध्य अंत सोच समझ कर करना है। हमें कोई भी कर्म गुस्से से, अपवित्रता से, स्वार्थ से, जल्दबाजी में नहीं करना है। तो आप अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अगर ये तीन अभ्यास प्रतिदिन बार बार करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकेंगे, सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। तो राजयोग का पहला अभ्यास आत्मचिंतन है। राजयोग की आधारशिला आत्मचिंतन है। जितना आप आत्मचिंतन करेंगे, स्वचिंतन स्वदर्शन करेंगे, आप अंतर्मुखी बनते जाएंगे। अपने आप आपके मन बुद्धि स्वयं के प्रति फोकस होने लगेंगे। आप स्व में केंद्रित हो सकेंगे, आपका नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि वो परम शक्ति परमात्मा कौन है जिससे हमें योग लगाना है, जिससे मन बुद्धि जोड़ना है, वो परमात्मा कौन है जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, प्रभु परमेश्वर कहकर याद करते रहे हैं। वो परम पिता परमात्मा कौन है? जबकि ये सत्य भी हम सब जानते हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहा जाता है, सबका मालिक एक कहते हैं, अंडरस्टूड है, परम सुप्रीम ऊंचे से ऊंच अल्टीमेट फाइनल ऑथोरिटी एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती, अनेक नहीं हो सकती। जब परमात्मा एक है तो उनका सत्य परिचय भी एक ही होना चाहिए। और आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मतें हो गई हैं। देखिए, जिसको श्री राम में भावना है वो मानते हैं कि श्री राम ही भगवान है, जिनको श्री कृष्ण से प्यार है वो कहते हैं श्री कृष्ण ही परमात्मा है, कई नेचर को गॉड समझते हैं, कोई आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, अपने आप को ही भगवान कहलाते रहते हैं, शिवोहम ब्रह्मोहम सोहम कहते रहते हैं, क्योंकि हम आत्मा ही परमात्मा है ऐसा कहते हैं। कई सब में परमात्मा है ऐसी भावना फैलाते रहते हैं कि तेरे में, मेरे में, कण कण में, सब में भगवान है। तो आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हो गई हैं, अनेक मतें हो गई हैं। सिद्ध है परमात्मा का सत्य परिचय हम नहीं जानते। हमारी बुद्धि में ईश्वर के बारे में जो कुछ ज्ञान है वो या तो हमने शास्त्रों से प्राप्त किया है या ऋषि मुनि, गुरु विद्वान पंडित आचार्यों से प्राप्त किया है या हमें अपने परिवार के तरफ से जो मान्यताएं मिली हैं वही हमारी बुद्धि में है। मतलब मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा के बारे में जो कुछ सोचा, समझा, महसूस किया, अपनी अपनी साधना, अपनी अपनी पवित्रता की ऊंचाई के आधार पर जिसने जैसा सोचा समझा अनुभव किया वही हमारे सामने रखा है। जो आज अनेक धर्म संप्रदाय मठ पंथ शास्त्र ग्रंथ किताबों के रूप में है, ये अनेक मतें ही सिद्ध करती हैं कि परमात्मा का सही परिचय हम नहीं जानते हैं। हमें दो बात बुद्धि में स्पष्ट कर लेनी चाहिए, परमात्मा का सही परिचय कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती है। अगर मनुष्य आत्माएं दे सकती थी तो हमें कब से मिल जाना चाहिए था। इसलिए कोई भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली शरीरधारी मनुष्य आत्माएं परमात्मा का सही परिचय नहीं दे सकती। अंडरस्टूड है दूसरी बात, बुद्धि में पक्की कर ले, परमात्मा का सत्य परिचय केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। सत्य स्वयं प्रकट होता है, परमात्मा खुद सृष्टि पर आते हैं और अपना सही परिचय हम आत्माओं को देते हैं। तो बहनों और भाइयों, स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से अपना सत्य परिचय हम आत्माओं को जो दिया है, वो सत्य परिचय आज मैं आपके सामने रखूंगी। प्रथम परमात्मा के सत्य परिचय की सत्य परिभाषा को हम समझेंगे कि वास्तव में परमात्मा किसको कह सकते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या वो नापदंड है जिससे हम वेरीफाई कर सकें कि परमात्मा का सही परिचय किसको कह सकते हैं। मैं पांच बातें आपको बताऊंगी। पहली बात, परमात्मा का सत्य परिचय उसे ही कह सकते हैं जिसे सभी धर्म मान्य करें। परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति समाज के पिता नहीं है। परमात्मा समग्र विश्व के पिता है, सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता है। इसलिए परमात्मा का सत्य परिचय उसे ही कह सकते हैं जिसे विश्व के मुख्यतः सभी धर्म मान्य करें। कुछ माने उसे, दूसरे न माने उसको परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हों। हम सब जानते हैं जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होते हैं। जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते भी, जो जन्म लेते हैं सबसे पहले प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। ये शरीर क्या है? प्रकृति है, पांच तत्व से बना है। जब जन्म लेते हैं शरीर धारण करते हैं हम स्थल और काल, टाइम एंड स्पेस के लिमिटेशन में आ जाते हैं। जो जन्म लेते हैं कर्म बंधन में बंधते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकते हैं। हम कर्म बंधन में बंधते जाते हैं। जो जन्म लेते हैं संबंध के बंधन में बंधते हैं। आप जानते हैं बच्चा पैदा होते ही पर्टिकुलर परिवार का सभ्य बन जाता है। वो किसी का बेटा है, भाई है, पोता है, रिलेशन में बंधने लगता है। जो जन्म लेते हैं सुख दुख के बंधन में बंधते हैं, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उस का फल भोगने के लिए भी हम बाध्य हो जाते हैं। जो सोचता है वो ही करता है, वो ही भोगता है, वो सुख दुख के बंधन में बंधता है। परमात्मा उसको कहा जा सकता है जो जन्म मरण के, सुख दुख के, प्रकृति के, कर्म के, संबंध के बंधनों से मुक्त है। इसलिए परमात्मा को सदा मुक्त, सदा स्वतंत्र कहते हैं। और हम सभी भी भक्ति में अक्सर भगवान से क्या मांगते रहते हैं, क्या मांगते रहते, हमें दुखों से छुड़ाओ, हमें इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, हमें जन्म मरण के फेरे से छुड़ाओ। हम सदा परमात्मा से मुक्ति मांगते रहते हैं। अंडरस्टूड है, जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो मुक्ति दे सकेगा। इसलिए परमात्मा केवल उनको कह सकते हैं जो सभी बंधनों, प्रभावों, सभी लेपों से मुक्त है। तीसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो स्वयं परम है, जिसके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है, वो ही फाइनल ऑल माइटी अथॉरिटी है। उनके कोई माता पिता, शिक्षक, गुरु, शेठ, स्वामी नहीं है, उनके ऊपर कोई आत्मा ही नहीं। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं परम पिता, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्रिसेप्टर, वो ही पिताओं के पिता, शिक्षकों के शिक्षक, गुरुओं के गुरु, पतियों के पति, नाथों के नाथ उससे कहा जाता है। उसके ऊपर और कोई आत्मा नहीं। और चौथी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो सदा अपनी स्थिति में, गुणों में, कर्मों में परम है, ऊंचे से उच्च है, सर्वोच्च, अपरिवर्तनशील, परम, ऊंचे से उच्च है। ऐसे नहीं आज परम है, धीरे धीरे मध्यम हो जाएंगे, अधम हो जाएंगे, नहीं। हम मनुष्य आत्माएं समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर परिवर्तन को प्राप्त करते हैं, सतो रजो तमो स्थिति में आते हैं। परमात्मा त्रिगुण से परे हैं, सदा एक रस है, सदा परम है, इसलिए केवल परमात्मा की महिमा में हम कहते हैं सदा पावन, सदा मुक्त, सदा शिव उसको कहते हैं। इसलिए लोग कहते भी हैं कि परमात्मा को पहचानना आसान है, क्योंकि वे सदा अपने गुणों में स्थित है, सदा प्यार का सागर है, सदा दयालु कृपालु रहम दिल है। और ये लोग क्या कहते हैं, इंसान को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हर घड़ी रंग बदलता रहता है। तो परमात्मा उसको कहेंगे जो अपने गुणों में, कर्तव्यों में, स्थिति में सदा परम है। और पांचवी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो सर्व ज्ञाता है और सदा दाता है। सर्वज्ञाता मीन्स सब कुछ जानते हैं, ज्ञान के सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, आलोक परलोक को जानते हैं, सारे ही यूनिवर्सल ट्रुथ को जानते हैं। इसलिए परमात्मा को नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर कहते हैं। हम परमात्मा के लिए कहते हैं ना कि परमात्मा सर्वज्ञ है। मनुष्य आत्माओं के लिए हम क्या कहते हैं, मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ है, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। क्यों, हम जानते हैं और भूल जाते हैं, हम स्मृति विस्मृति में आते हैं। परमात्मा सदा जागति ज्योत है, अर्थात ज्ञान के सागर है। इसलिए भक्ति में आप देखिए, हम परमात्मा को ही कहते हैं तमस्, सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मां सतगमय। क्योंकि परमात्मा आकर सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं और अज्ञान अंधकार से निकालते हैं, और वे सदा दाता है, सदा दाता है, देते ही रहते हैं। इसलिए हम भक्ति में भी महिमा गाते हैं, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं। परमात्मा सदा दाता है। हम मनुष्य आत्माएं सदा दाता नहीं, पहले हम दाता थे, देवता थे, देवी देवता मीन्स देने वाला, दाता। इसलिए आप देखिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, दाता वरदाता, देवता देवी देव मीन्स देने वाला। आज हम देवता नहीं रहे हैं, आज तो क्या बन गए हैं, क्या बन गए हैं, लेवता, लेने वाले बन गए हैं। हमें चाहिए चाहिए चाहिए, हम निस्वार्थ भाव से बहुत कम कर पाते हैं। परमात्मा सदा दाता है। परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषा को बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से सोचिए, सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते, सोचिए। ये पांचों ही बातें बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से बताइए, क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी आत्माओं को परमात्मा कह सकते हैं, कह सकते हैं, नहीं? तो प्रथम सत्य बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए, कोई भी देहधारी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा की याद से महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा धर्मात्मा देवात्मा बन सकते हैं, परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई बनता नहीं है, परमात्मा कोई पोस्ट पोजीशन या डिग्री नहीं है जो इंसान मेहनत करके पाले। अनादि अविनाशी एक परमात्मा है ही, कोई नए परमात्मा बनते नहीं जाते हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कहते। जैसे एक बच्चा पिता जैसा रूपवान गुणवान ज्ञानवान विद्वान धनवान बलवान बन सकता है, पिता ही नहीं बन जाता है। पिता पिता है और पुत्र पुत्र है, रचयिता रचयिता है, रचना रचना है। हम परमात्मा जैसे बन सकते हैं, परमात्मा ही नहीं बन जाते। इसलिए कोई भी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी बात ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, जो भी साधु सन्यासी है, ऋषि मुनि है, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। बेशक वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और सत्य तो ये है कि परमात्मा की याद से ही तो महान बनते हैं, योग साधना से ही तो महान बनते हैं। हम उनको महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा का सही परिचय ज्ञान ना होने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनको ही भगवान समझने लग जाते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, परमात्मा रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। अल्पकाल की प्राप्ति मनुष्यात्माएं कराती है। परमात्मा हमारे जीवन की दो चार बातें ठीक नहीं करते हैं, वो हमारे पूरे जीवन को ही पवित्र श्रेष्ठ दिव्य बनाते हैं। तो ये जो भी साधु सन्यासी हैं, महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, जिन्होंने इस दुनिया में आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया है, फिर वो इस्लाम के अब्राहम हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, यहूदियों के हजरत मूसा हैं, क्रिश्चियनों के जीसस क्राइस्ट हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, गुरु नानक जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, अशो जरथुस्त है, ये जो भी हैं धर्म स्थापक, वे धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और इन धर्म स्थापकों ने स्वयं ही सत्य कहा है, हम उस गॉड के मैसेंजर हैं, हम उस खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, ये उनके फॉलोअर्स भूल करते हैं। आगे चलकर वे अपने धर्म स्थापक में सीमित हो जाते हैं, उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और चौथी बात, बहुत निष्पक्ष भाव से और विवेक से आपको समझ ली है। हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते, कितने देवी देवताओं को हिंदू भाई बहने मानते, जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश है, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधे कृष्ण, श्री सीताराम, श्री अंबा दुर्गा सरस्वती, श्री गणेश हनुमान महाकाली, जिन भी देवी देवताओं को हम पूजते हैं, वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। देवी देवताएं अनेक है, परमात्मा तो एक ही है। और आप देखिए इन देवी देवताओं को विश्व के सभी धर्म मान्य नहीं करते, करते हैं नहीं। कोई भी देहधारी को सभी धर्म मान्य नहीं करते। आप और धर्म की बात छोड़िए, क्या हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय सभी देवी देवताओं को मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते। हम इनको विश्व के सभी धर्म की आत्माओं के परम पिता कैसे कह सकते हैं? हर देवी देवता के जन्म की, जीवन की, कईयों के मृत्यु की पूरी जीवन कथाएं हम सुनाते। हम इन देवी देवताओं के माता पिता, बंधु, गुरु, सखा, पत्नी, बच्चे बताते। हम उनको देह संबंधों में बंधे हुए, उन संबंधों की पालना लेते हुए बताते। हर देवी देवता को श्रेष्ठ कर्म करते हुए दिखाते। आप देखिए कि वो आए ही इसलिए असुरों का संहार करने, दुखियों को सुखी बनाने, आतताइयों को छुड़ाने। हम उनको श्रेष्ठ कर्म करते हुए दिखाते हैं और उन श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप हर देवी देवता को स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए बताते, दैवी राजाई करते हुए दिखाते। देखिए इसी का यादगार आज तक मंदिरों में देवी देवताओं को कितने न वस्त्र अलंकार आभूषणों से श्रृंगारित करते हैं। ये स्वर्गीय सुखों की निशानी है। हर देवी देवता के मस्तक पर रत्न जड़ित सुवर्ण ताज दिखाते हैं, सुवर्ण सिंहासन पर बैठे हुए बताते हैं। ये राजाई की निशानियां हैं। तो जो भोक्ता है उसे परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा की महिमा में कौन से विशेषणों का प्रयोग करते हैं, कौन से विशेषणों का प्रयोग करते हैं कि वे अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। हम उसको निराकार, निरंजन, कर्मातीत कहते हैं। तो अब आप बताइए, ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है? ऐसा कौन सा स्वरूप है? है कोई स्वरूप जो सभी धर्म को मान्य है? कौन सा स्वरूप है? तो मुंझने की बात नहीं है। परमात्मा को जानना सबसे सहज है। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सुप्रीम सोल है वो भी आत्मा। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा रूप से परम नहीं है, अपने गुणों और कर्तव्यों से ऊंचे से ऊंचे। और परमात्मा का ये दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप चित्र में आप देखिए, विश्व के सभी धर्मों को मान्य है। हिंदू भाई बहने ज्योति बिंदु परमात्मा को ही ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजते हैं। ये ज्योतिर्लिंग कोई मनुष्य का आकार नहीं, ज्योति बिंदु परमात्मा का भक्ति में पूजन के लिए जो प्रतीक बनाया गया वो ज्योति बिंदु ज्योतिर्लिंगम स्वरूप। इसलिए श्री राम को भी शिव लिंग का पूजन करते हुए बताते, वृंदावन गोपेश्वर में श्री कृष्ण को भी शिवलिंग के आगे नमन करते हुए बताया है। इवन शंकर जी को आप देखिए, शिवलिंग के आगे ध्यान अवस्था में बताते हैं। शंकर जी को तो कहते ही है जोगी तपस्वी। सोचिए, शंकर जी स्वयं परमात्मा है तो वो किसके ध्यान में बैठे? ध्यान तो अपने से उच्च का किया जाता है ना। शंकर जी तपस्वी हैं, मीन्स उनके ऊपर भी कोई परम शक्ति है, जिस परम शक्ति को ही परमात्मा ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। मुस्लिम भाई बहने स्पष्ट कहते हैं अल्लाह नूर है। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, हिंदी भाषा में हम कहते हैं, वही बात अरबी भाषा में कहते हैं अल्लाह नूर है। गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, किसके ध्यान में बैठे, किससे बुद्धत्व मिला? वो है परम चैतन्य शक्ति परमात्मा, जो सत्य ज्ञान से हर आत्मा को जागृत करते हैं। क्राइस्ट ने भी स्पष्ट कहा, गॉड इज लाइट, आई एम ए सन ऑफ गॉड। उसने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। गुरु नानक जी ने भी कहा, तुम मात पिता हम बालक तेरे। उन्होंने भी एक निराकार ओंकार, एक सतनाम करता पुरुष, अकाल मूरत की महिमा की। तो देखिए विश्व के जितने भी मुख्यतः धर्म है और उनके धर्म स्थापकों का मूल इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है, निराकार है, हमारे जैसा शारीरिक आकार नहीं है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो आज से अपनी बुद्धि में ये स्मृति स्पष्ट धारण कर लीजिए कि जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मेरे अविनाशी पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा शारीरिक नाम नहीं है। उनका नाम गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। वो सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनको शिव कहते हैं। शिव मीन्स बेनिफैक्टर, कल्याणकारी। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, शिव कल्याणकारी है, सुंदर सदा पावन है। बेशक भक्ति में परमात्मा के अनेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम गाए गए हैं, अमरनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, सोमनाथ, पर हमें नामों की लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है। हम उनके मूल नाम को याद करते हैं, कल्याणकारी शिव, जिसको प्यार से यहाँ हम शिव बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स पिता। यहाँ कोई साधु बाबा की बात नहीं है, शिव बाबा मीन्स शिव पिता। परमात्मा हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं। जो पिता परमात्मा संपूर्ण सत्य ज्ञान, सर्वगुण, सर्व शक्तियों के सागर है, दाता है। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर, अखुट भंडार, सदा दाता परमात्मा के हम बच्चे हैं। सोचिए हम कैसे होने चाहिए, हम कैसे होने चाहिए। शेर का बच्चा शेर होता है, परमात्मा के हम बच्चे परमात्मा जैसे होने चाहिए, पर हम उनको भूल चुके हैं। हमारा योग टूट गया, हम दुखी अशांत पतित बन गए। पिता दाता है और बच्चे मंगता बन गए। इसलिए देखो भक्ति में मांगते ही रहते हैं। तो परमात्मा, ऐसे पिता परमात्मा अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वे हमें पतित से पावन बनाते हैं। जब सारा विश्व विकारों में फंस जाता है तब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। सत्य ज्ञान और योग से हमें पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाते हैं। परमात्मा इस संसार को नरक से स्वर्ग बनाते हैं। विश्व पिता परमात्मा ही विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। ज्ञान गुण, ज्ञान योग और पवित्रता के बल से नए विश्व की स्थापना करते हैं। और ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। तो परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं? परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। युगे युगे आते तो कलयुग कैसे हुआ? इसलिए परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। हर कलयुग के अंत, हर 5000 वर्ष के अंत परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं। कलयुग अंत, सतयुग आदि के संधि काल को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। भाइयों और बहनों, वर्ल्ड साइकल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है, जब स्वयं परमात्मा हमें पतित से पावन बनाने आते हैं। इसलिए जो कलियुगी नर नारी परमात्मा के रचे हुए इस ज्ञान यज्ञ में खुद की बुराइयों को स्वाहा करेंगे, वे आने वाले सतयुगी दुनिया के लायक देवता बनेंगे। इसलिए आप सबको यहां किस लिए बुलाया गया? ये ज्ञान यज्ञ है। आप सबको यहां बुलाकर हमें यही संदेश देना है कि वर्ल्ड साइकल में ये कल्याणकारी समय चल रहा है। इस समय को पहचान कर, परमात्मा के आदेश को मानकर, जो कलियुगी मनुष्य आत्मा पवित्र योगी बनेंगे, वे सतयुग में जाने योग्य बनेंगे। कौन कौन बनना चाहेंगे? खुशी से हाथ ऊपर करिए, श्रेष्ठ बनने की बात है, बहुत अच्छा। और लास्ट बात, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, मीन्स परमात्मा कहीं और रहते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। जरूर परमात्मा कहीं और रहते हैं जहां से सृष्टि पर आते हैं। आत्मा के लेसन में आपने समझा है कि ये दुनिया हम आत्माओं का भी घर नहीं, हमारे लिए भी ये कर्म क्षेत्र है। तब तो हम कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो कहां से आए हैं, कहां जाना है? हम आत्माओं का जो असली घर है, वास्तव में वो पिता परमात्मा का असली घर है। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं ऊपर वाला, कहते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला कहते हैं, यहां वाला नहीं कहते हैं। तो हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर परमधाम है। चित्र में देखिए सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से बताया है वो अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व है। हम आत्माएं उस ब्रह्मलोक की निवासी, वहां से हम इस दुनिया में आकर चित्र में नीचे आसमानी रंग से ये दुनिया बताई है। ये फिजिकल वर्ल्ड है, यहां हम आत्माएं आकर शरीर धारण करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। हम आत्माएं इस संसार चक्र में आकर कलयुग अंत में पतित बन जाते हैं, तब परमात्मा आते हैं हमें पावन बनाते हैं। तो ये है परमात्मा का सही परिचय जो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को बताया है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है, क्योंकि धर्मात्माएं महात्माएं देवात्माएं परमात्मा की याद से ही महान बने हैं। तो हम क्यों वाया वाया घूमते रहे, हम डायरेक्ट परमात्मा से योग लगाएंगे तो सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। हम 3 मिनट बहुत प्यार से एकाग्रता से उस पिता परमात्मा को याद करेंगे जिसका सही परिचय अब आपको मिल चुका है। अपनी अपनी मान्यता अनुसार, अपनी अपनी भावना से भगवान को याद करना वो भक्ति है। परमात्मा को सही रूप से जान पहचान कर सत्य ज्ञान से निश्चयात्मक बुद्धि बन परमात्मा को याद करना उसको योग कहते हैं। कल मॉर्निंग सेशन में योग कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा। आज परिचय से हम उस पिता को याद करेंगे। अपना डायरी, पर्स, बैग, फाइल साइड में रख दीजिए, हाथ में गोद में लेके ना बैठे, कमर सीधी करके बैठिए ताकि आप थके नहीं। आंखें नेचुरल खुली रहने दें। हमें चिंतन मन और बुद्धि से करना है, इसमें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे, मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन प्यार से उस पिता को याद करना है। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में जाएंगे, मन की आंख से ज्ञान नेत्र से शिव बाबा को देखेंगे और बुद्धि से याद करेंगे। ये आपका नया अभ्यास है, इसलिए मैं कमेंट्री दूंगी, आपको मुख से रिपीट नहीं करना है, मन में ही रिवाइज करना है, रियलाइज करना है और उसमें स्थित होना है। आत्मा स्थिति में स्थित हो जाइए। मन बुद्धि से असली घर परम धाम में पहुंच जाइए। परम ज्योति बिंदु शिव पिता को मन की आंख से देखिए। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता, प्यारे शिव पिता, आज आपके सत्य परिचय को पाकर मुझे अति हर्ष हो रहा है। जैसे आप सत्य ज्ञान सर्वगुण सर्वशक्ति शक्तियों के सागर है, अखुट भंडार है, आपकी संतान मैं आत्मा, मुझे भी आपके जैसा बनना है। आपके गुणों को जीवन में धारण करना है। मेरे प्यारे शिव बाबा, आप शांति के सागर शांति दाता है। मैं आत्मा आपकी संतान, मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप, मैं सदा शांत रहूंगी, शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। मैं आपसे योग लगाती हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। आपकी याद से मैं शुद्ध पवित्र बनती जाती हूँ। मुझे यही निश्चय और खुशी है मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान मैं शांत हूँ शुद्ध हूँ मैं स्वयं एक शक्ति हूँ।